SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
देश आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। लेबर का भ्रामक सूचना विधेयक संसद के 25 नवंबर यानी कल शुरू होने वाले अंतिम सत्रीय सप्ताह के एजेंडा पर नहीं होगा। ये मिस इन्फॉर्मेशन बिल सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना और दुष्प्रचार को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी ठहराने का प्रस्ताव कर रहा है। इस विधेयक की कानूनी विशेषज्ञों और मीडिया कंपनियों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई है, जबकि गठबंधन और ग्रीन्स ने कहा है कि वे इस विधेयक का विरोध करेंगे। संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने कहा है कि ये विधेयक हटा दिया गया है क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि इस बार संसद में इसका पारित होना मुमकिन नहीं है। वहीं उन्होंने गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि जब वे सरकार में थे तो उन्होंने सुरक्षा उपायों को कानून का रूप देने का वादा किया था, लेकिन अब वे पक्षपात को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरी ओर लिबरल सांसद माइकेला कैश ने कहा कि लेबर को ये विधेयक पेश नहीं करना चाहिए। वहीं एक ऑस्ट्रेलियाई मेडिकल छात्रा को कथित तौर पर जेरूसलम में अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस के पास एक अपार्टमेंट में इजरायली सेना द्वारा गोली मार दी गई है। रनेम अबू इजनीद को चेहरे, सीने और दाहिनी आंख में गंभीर चोट आई है और वे मेडिकल उपचार के लिए मेलबर्न लौट आई हैं। विदेश मामलों का विभाग कहता है कि वे जॉर्डन में एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि वे व्यक्ति अबू इजनीद ही हैं। फिलिस्तीनी ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर अमीरे फकूरी का कहना है कि ये घटना 15 नवंबर की है। डॉक्टर फकूरी ने बताया कि अबू इजनीद के माता पिता ने उनसे इस घटना की जांच का अनुरोध करने का आग्रह भी किया है। वहीं पुलिस ने न्यूकासल पोर्ट पर जलवायु प्रदर्शन के बीच 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 138 प्रदर्शनकारियों को शिपिंग चैनल में घुसने, जहाजों की आवाजाही में बाधा डालने और पुलिस के निर्देशों का पालन न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जलवायु कार्यकर्ता समूह राइजिंग टाइड के प्रदर्शनकारियों ने न्यूकासल पोर्ट पर 4 दिवसीय रैली की। न्यूकासल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला बंदरगाह है। बीते दिन शनिवार को 3 लोगों को पानी से हटाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। ग्रीन्स नेता एडम बैंच ने रविवार को रैली में हुई गिरफ्तारियों से पहले भाग भी लिया था। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। 30 नवंबर से चीन यात्रा करने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अब देश में 30 दिनों तक वीजा मुक्त प्रवास का लाभ उठा सकते हैं। चीन ने पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 36 अन्य देशों के लिए 15 दिन का वीजा मुक्त प्रवास दिया था, जिसे अब बढ़ाकर 30 दिनों तक का कर दिया गया है। इस वीजा मुक्त नीति का विस्तार जापान, बुल्गेरिया, रोमानिया, क्रोएशिया और मॉन्टेनीग्रो तक भी किया गया है। वहीं लाओस के वोंगवियोंग में संदिग्ध मेथनॉल पॉइजनिंग से दो मेलबर्न किशोरियों की मौत के बाद उनके परिवार सरकार से जवाब मांग रहे हैं। 19 वर्षीय हॉली बाउल्स और बियांका जोन्स अपने हॉस्टल में कथित तौर पर मेथनॉल से दूषित पेय पीने के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। इस सप्ताह दोनों की थाईलैंड के दो अलग अलग अस्पतालों में मृत्यु हो गई थी, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और डेनमार्क के 4 अन्य लोग भी प्रभावित हुए हैं। और अंत में खबरें भारत से। भारत की राजधानी दिल्ली में सांसों का संघर्ष अब भी जारी है। वायु प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। देश की राजधानी में कई इलाकों में रविवार को भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली की आबोहवा में सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, खास करके संवेदनशील रूप से बीमार, बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह हवा खतरनाक बताई जा रही है। दिल्ली का AQI शनिवार को भी गंभीर श्रेणी में था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का AQI 20 दिनों से अधिक समय से गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। AQI के गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होता है, विशेष रूप से सूक्ष्म कण पदार्थ यानी PM2.5 के कारण, जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकता है और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र की निर्णय सहायक प्रणाली यानी DSS ने शनिवार को दिल्ली के प्रदूषण के लिए 16.4% का कारण वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को बताया, जो जहरीली हवा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना प्रदूषण का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। इसी बीच सुबह और शाम के समय शहर में धुंध और धुएं की मोटी परछाई नजर आ रही है, जिससे दृश्यता भी कम हो रही है। इसी के साथ 24 नवंबर 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वृषाली को इजाजत। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।